नमोऽर्हन्ताणम्। नमो यारो सव पावप्पणासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्।
ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बाद में पढ़ लेना। मान रहा हूं आज 10 धर्मों में से ये अंतिम धर्म है। जैसे मंदिर बनाने के बाद सुवर्ण कलश चढ़ाते हैं, एक तरह से सुवर्ण कलश है। कुंडबुंद देव ने भी समय सार में इसकी चर्चा की। दो गाथाओं फिर मैं पढ़ के आपको सुनाऊं, उसके बाद आज के उत्तम धर्म पर व्यावहारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते भी प्रस्तुत करो। आचार्य कुंडबुंद देव कहते हैं 8वें अध्याय में, एवं अलिये अगत्ते अबंबचेरि परिग्रहे चैव कीररि अध्यवसानं जंतेणु बज्जदे पावम्। शूसा असत चूड़ी अग्रम और परिग्रह पांचों पाप है। शील व्रत नहीं पालना अथवा ब्रह्मचर्य नहीं पालना पाप का कारण। फिर दूसरे निराकरण के लिए दूसरी कारिका देते हैं, तहरीय इसी प्रकार से सच्चे दत्ते बंबे अपरिग्रहतने चेव कीरदि अध्यवसानं जंतेणु बज्जदि पुण्यम्। इसी तरह से अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इस पुण्य के कारण। ये घर घर में टांग कर नहीं रखना, दिल में टांगना चाहिए दोनों को, तभी भेद विज्ञान होगा। उससे पहले भेद विज्ञान नहीं होगा इसको जब तक नहीं करो। पुण्य और पाप ये दोनों अपने आप में शक्तिशाली है। अनादिकाल से जीव पर जो पाप का सवार हुआ है भूत, वो पाप बुद्धि की ओर ही ले जाता है, नीति की ओर ले जाता है। पार से उत्तर देश में कोई जरूरत नहीं, लुढ़क जाए तो नीचे पहुंच जाएगा, पर वो पहाड़ चढ़ते समय सांस फूलता है, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलता है, नीचे गिरने में देरी नहीं लगती है। तो नीचे गिरने के लिए उन्होंने पाप कहा है, ऊपर जो पुरुषार्थ है उसके लिए पुण्य कहा। इसीलिए रश्मिमाला नामक एक ग्रंथ में ये लिखा है, जो निराशावादी होकर इस संसार के अंदर ही आसक्त हो जाते हैं वो पापी है, और जो पुरुषार्थी है और संयम और सील को पालन करते हैं वही पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। ये छोटी सी शंका पूछनी आप लोगों से, राम और सीता 14 साल नौजवानी में वनवास में रहे, वो कैसे संयम से रहे, इस पर आप घर घर में अनुसंधान करिए। 14 साल के जवानी में वनवास में रहे और दोनों पति पत्नी विधिवत शादी होने के बाद वो इक्ष्वाकु उसी वो संयम से रहे, सील से। इसीलिए उत्तर पुराण में गुरुभद्राचार्य ने उनके जनता में मिलके इक्ष्वाकु वंश कुल केसरी ये उपाधि दिए थे लिखकर, काल की बहुत हुए इक्ष्वाकु वंशियों ने, परंतु ये कुल केसरी था। कौन? राम। सड़क पर बैठ के कुछ भी बातें करना और चीज है, और ये अध्यात्म जो है ये और चीज नहीं है। तो इसलिए मान भाव जिसको सारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन लोग कोई ले डूबा, ऐसा जो ये अब्रह्म है उस ब्रह्म को प्राप्त करना ये आसान काम नहीं। इस पर भर्तृहरि ने इत्यादि अनेकों ने अनेक तरह से लिखा है। क्या बतावे तीन लोग को कैसे, भर्तृहरि के शब्दों में आप सुनना चाहे तो सुनिए। कृषक खान खंजा श्रवण रही तो पृच्छ विकरो वही पूयो गिरण कृमिकुल शतेरावृत तनु मदना। एक अत्यंत वृद्ध बूढ़ा कुत्ता सड़क पर पड़ा हुआ, दो दिन से प्यासा भूखा, सैकड़ों शरीर से कीड़े गिर रहे थे, पीप और खून बह रहा था, बहरा था, काला था, एक पैर नहीं पूंछ कटा हुआ, किसी मटके के अंदर खाने के लिए कुछ देखा तो उसमें गर्दन फंस गया और मुंह हिलाने से टूट गया और गले में उसका फांसा अटक गया। तो सांस लेते प्राण छोड़ रहा है करके लोग बैठे हुए ऐसे चबूतरे में कहने लगे, साहब इसको सड़क पर गिरेगा मरेगा तो बदबू आएगी, किसी को बुलाओ हटा दो। उस पर से सामने से कुत्ती जाते हुए देखकर उसके काम विकार के कारण पीछे लग गया। जो मरने जा रहा था, जो नाना व्याधियों से ग्रस्त है, ऐसे वो कुत्ता जो है विकार के वशीभूत होके उसके पीछे लग गया। और जो नाना तरह के व्यंजन खाकर और इस आत्मा की चर्चा करने वाले दुनिया के अंदर अध्यात्म के असंख्य लोग घर घर मिलेंगे, पर जिस पर विजय करने से ब्रह्म बोले तो आत्मा की प्राप्ति होती है, उसको छोड़ना आसान काम नहीं। घर में बैठ के किताब लेकर और युद्ध भूमि की चर्चा करने वाले घर घर में मिलेंगे, पर युद्ध भूमि में खड़े होकर और बिना तीर दिखाए और छाती के साथ यहां सीने पर तलवार खाकर और प्राण छोड़ने वाले इस दुनिया में कितने हैं, ये भगवती आराधना में दृष्टांत दिया है। और पीठ दिखाकर भागने वाले तो बहुत मिलेंगे, ऐसे ही इन बातों की चर्चा करने वाले बहुत मिलेंगे। योग में लिखा है ब्रह्मचर्य तपसा राजा राष्ट्रम रक्षत, राजा की राष्ट्र की संस्कृति की समाज की यदि रक्षा चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य। आज जो लोग नाना कृत्रिम उपायों के द्वारा जनसंख्या को रोकने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं और धर्म को यम ही हवा में, मैंने क्या रखा है इसमें, धर्म में क्या रखा है, ब्रह्मचर्य में इत्यादि हंसी मजाक उड़ाने वाले जिनके खंधे पर जिम्मेदारी है, वह जो पार्लियामेंट में बैठे वो रात्र दिन चिंता से मरे जा रहे हैं, तीव्र संख्या बढ़ती जाएगी, क्या क्या होगा इस राष्ट्र का। हमारे धर्म और तत्व ज्ञान इस मानवी ही नहीं संस्कृति ने विश्व के सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्होंने तत्वज्ञान का प्रवरूपण किया, राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए तत्वज्ञान का प्रवरूपण किया है। इसीलिए राजा प्रत्यक्ष देवता जैसे राम जी को कहते थे, बोले प्रत्यक्ष देवता, बोले क्यों, बोले देवता भी जो है सही में नहीं मिलते हैं और देवताओं से भी देवता जो है इसी सही में मिलते हैं। तो महानुभाव भगवान महावीर ने जो इस पर और बहुत अच्छे सुंदर ढंग से इसका जो प्रतिपादन आध्यात्मिक और व्यवहारिक रूप से किया है, ये दोनों आज भी उतने आवश्यक है जितने प्राचीन काल। आप एक क्षण भर के लिए सोचिए, प्राचीन काल के अंदर जब पांडवों के युद्ध के बाद अनेक संख्या घट गई और बहुत कम लोग मिले, तो इंद्रप्रस्थ जाके देखते तो वहां जनसंख्या और विधवा महिलाएं महिला थी, कोई नौजवान नहीं था, चारों तरफ रोना और पीटना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा के साथ वो उदास होके जो जा रहे थे हजार है संसार, बोले वीरों का वंश नष्ट होगा और कुछ दिन गृहस्थी में बसो, संख्या बिल्कुल ही खत्म हो गई, ये बात उन्होंने कही। जबकि अपुत्र से गतिर्नासी जो ऐसे भी सूत्र वैदिक धर्म में मिलता है। और उस समय फिर ब्राह्मणों ने भी अपना जो शादी विवाह में अपने मंत्र बदल के अष्टपुत्र सौभाग्यतिर्भवत, जो आठ बच्चों को पैदा करेगी वो जो क्या है बोली सौभाग्यवती है, ये प्रचार शुरू कर दिया। जब संख्या घट गई और बाद में अब जो है आजादी मिल गई और विश्व में आंदोलन चला, तो ब्राह्मणों ने उसमें से छह घटाकर दो बचा दिए मंत्र में, दो पुत्र सौभाग्यवतिर्भवत। अब कह दे तो दंडनी बन जाता है, इसलिए उन्होंने शादी व अष्टपदी के समय वो मंत्र भी बदल दिया। अर्थात ये सिद्ध होता है कि काल के अनुसार मंत्रों में भी कुछ घटाई बढ़ाई होती है। तो मान भाव कि जिनके खंधे पर जिम्मेदारी वो राष्ट्रीय व्यवहारिक जीवन के दृष्टि से भी और राष्ट्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पहले जो बड़े संयम से पालन करते थे और बहुत आवश्यक थे, और छोटी सी बात के लिए व्यर्थ हो जाते थे। आपको अनेक कहानी अपने शास्त्रों में, लोग कहते प्रथमान युग में क्या रखा है, प्रथमान युग के बिना द्रव्यान युग तो समझ में त्रिकाल में संभव नहीं आ सकता। तीन लोग में कोई भी कहे कुछ भी कहे, मेरे पास प्रमाण है मौजूद। जब राजकुमार दो भगवान राम के जमाने में देशभूषण और कुलभूषण गुरुकुल में पढ़ के आए, जब पढ़ने गए थे तो उनके घर में वो दो ही थे राजकुमार। उसके पश्चात जब पढ़ के पूरा और अध्ययन करके 72 कला में कुशल हो गए और घर लौटे, मां और दूसरी कन्या आंखों शरत व आरती अपने श्रृंगार करके आरती उतार रही थी, तो दोनों में झगड़ा हो गया देशभूषण कुलभूषण भाइयों में, बोले मैं इससे शादी करूंगा और मैं इससे शादी करूंगा। मान का अरे तुम क्या बात कर रहे हो, बोले क्यों, बोले तुम्हारी बहन है। वहीं से दरवाजा से बाहर लौट के और मुनि बनती कुंतल गिरी पर तप करते रहे, उन पर उपसर्ग आया तो राम ने उन दोनों का उपसर्ग निवारण कर दिया और वहीं से वो मुक्त हो गए, जहां आचार्य शांतसागर महाराज ने संलेखना है। क्या बात करते आप लोग, इसीलिए लोग कह रहे कि प्रथमान युग में क्या रखा है, क्यों कि ये कहानियां सामने खड़ी हो जाती है और वह आसान नहीं उसको भेदना, इतने से बात से ग्रस्त हो गए। यूनान में एक वृद्ध आदमी और तत्वज्ञान अध्यात्म पढ़ाता था अरस्तु, तो बाल सफेद हो गए थे उसके। नौजवानों को गुरुकुल में पढ़ाते समय उसने कहा कि ब्रह्मचर्य का महत्व सिखाना शुरू कर दिया, तो हंसी मजाक उड़ाया उन नौजवानों ने क्या बूढ़ा आदमी, इसको ब्रह्मचर्य का महत्व देखो बच्चे तुमने सब तो सीख लिया, पर अंत में अब जो है ये अंतिम अध्याय इसको पढ़ाना है करके कहा तो मजाक उड़ाया। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा इनको क्या करें, कैसी शिक्षा देवे, तो इसलिए जिस बगीचा में पढ़ाते थे तो वहां एक नगर नारी बहुत खूबसूरत उसी बगीचा में थी और उसको अपने पीठ पर बिठाकर घोड़े जैसा चलने लगी। तो नौजवान पढ़ने वाले आए और लाठी और पत्थर ले, बोले क्यों क्या हो गया, बोले आप तो हमारे गुरु हो, बोले देखो मेरे जैसे बूढ़े के मन भी चंचल हो सकता है, तो तुम्हारे नौजवान यौवन संकटम, ये यौवन एक महान संकट है, इस पर से पार होना, उसको मारो नहीं मुझे मारो नहीं, मैंने तुम्हें ही दर्शाने के लिए मेरे जैसे बूढ़े का मन भी चंचल हो सकता, कल तो कह रहे थे मजाक कर रहे थे और आज इसको तुम ये कर रहे हैं। तो महानुभाव विश्व के इतिहास में कहानियां मौजूद है जो ब्रह्मचर्य तीन लोक में सबसे श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसको महत्व ये दिया कि आचार्य ने सूत्र लिखा कि ब्रह्म ने आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य, पांचों इंद्रियों के जो वशीभूत नहीं है उनसे निरस्त करके उनको बाहर नहीं छोड़ते हुए वो उनको समेट कर और केवल शुद्ध आत्मा के अंदर ही स्वरूप में ही रमण करता है, क्षण भर के लिए भी कहीं बाहर उसकी दृष्टि नहीं है, वह असली ब्रह्मचारी जिनको 18,000 तीर्थ का पूर्ण अतिचार रहित परिपालन के बाद ही पालन कर सकता। तो आज इस विज्ञान युग के नाम से अज्ञान को प्रसारित करने वाले और नाना करके इन पिक्चर हॉल में ले जाके अपनी बहुओं को बेटियों को बेटे को ले जाकर टिकट कटवाकर और सस्ता धंधा सिखाते हैं, वहां मजाक सिखाते हैं और बोलते हैं उससे कोई पाप नहीं लगेगा और पुण्य नहीं लगेगा उससे तो स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, और मंदिर जाने से नरक होगा और धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा, पाप होगा। और एक मजाक उड़ाया जा रहा है, खोखला बनाया जा रहा है अध्यात्मवाद को। इसके उपदेश की जरूरत नहीं है कि पिक्चर मत देखो, डाकू चोरों को कहानियां मत पढ़ो, प्रथमान योग बंद का कारण है, यह बंद का कारण नहीं है। समय रहते ही समाज को जागरूक करने के लिए मैं कहता हूं आप लोगों को, जब तक आप अपने बच्चों को, नौजवानों को भगवान राम, महावीर इत्यादियों के जो संयम की शिक्षा नहीं दोगे, एक दिन आपको सड़कों पर घुमा देंगे वो अपने आपके बेटे। पिता ने कहा बेटा तुझे बाहर जाना है, प्रणाम करके सिर झुका के हो और राम जी शिरोधार आज्ञा माने, और आज किसी को कहा के देखो आपका कान पकड़ के बाहर निकाल देगा वो बेटा। ऐसे काल आ गई है। बोलेगा पिताजी आपने वचन दिया, आप पधारिए, हम तो आराम से रहेंगे। मैंने वचन नहीं दिया ये कहते। तो मान भाव 14 साल वनवास में भी नौजवान होते राम ने और सीता ने संयम पाला, इस पर रिसर्च होना चाहिए। बहुत से लोग इस पर मजाक उड़ाते हैं, बहुत से लोग क्या रखा है कहते हैं, राम भी कुछ नहीं हुए ऐसे कहते हैं, ना ना करके तर्क वितर्क उतर्क कर रहे हैं। यह अध्यात्मवाद बड़ा सस्ता है, और जितना सस्ता उतनी जल्दी पतिपाती नहीं भी है जब तक संयम नहीं है। और यदि उसके साथ संयम है तो वह सुमेर पर्वत जैसे पंडित जी ने कहा कि अभेद नाना तरीके देवांग ने आकर नाना तरीके किया, जिस एक के कान एडवर्ड ने अपने राज्य को छोड़ दिया। इस दुनिया में किस किसने क्या क्या पतन मार पर नहीं है, और जब सड़कों पर क्रिया एक नाना तरह के छेड़ाखानी होती लड़कियों की, तब सरकार, पुलिस और समाज सब क्या हो गया, बिगड़ गया, ये नाना तरह की बातें करते हैं। क्यों करते हैं सब? इसलिए मुझे केवल सुनना नहीं है, नौजवानों से मुझे कहना है, इन बूढ़ों से वृद्धों से कुछ नहीं कहना है। उनका तो लकड़ी जाके वहां गिर गई स्मशान भूमि में, उनको तो कुछ है, क्योंकि वृद्ध होने के बाद तो उसकी सारी इंद्रियां सो जाती। इसलिए हाँ बेटे नौजवान, जो अब तक हमारे प्रवचन आप सुनते रहे, शास्त्रों में बताया कि भैया आप सभ्यत बनते हैं तो सदार संतोष। क्या हमारे आचार्य ने अमृतमय वाक्य दे दिए, सदार संतोष। पहले तो कह दिया अमृतचंद्र आचार्य ने, छोड़ ही दो उंगलियों को दंड नहीं बताए यदि गृहस्थ का उपदेश देते तो। उनका पहले उसको सर्वस्व त्याग का उपदेश दे दो। बोले महाराज ये तो मैं खरीद नहीं सकता हूं, असमर्थ हो, तब सदग्रस्त का उपदेश है, और उसके सदग्रस्त के लिए सदार संतोष। सदार संतोष ये वाक्य तीन लोक के लिए अमृत समान है। इस वाक्य पर अनुभव करना, और इसको शास्त्र में क्यों रखा गया, राष्ट्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि, संस्कृति की दृष्टि से, इसका अनुसंधान होना बहुत जरूरी है। वह अनुसंधान किताबें में, कागज में नहीं, वह अनुसंधान प्रत्येक नौजवान के हृदय में अनुसंधान होना चाहिए। जब तक स्कूल और कॉलेज में ये बातें नहीं पढ़ाई जाएगी, सरकार 10,000 और 10,00,000 और पुलिस फौज खड़ा कर देवे, उसको कोई रोक नहीं सकता, सरकार पर नहीं रोक सकते। ये संयम की शिक्षा नीचे से ऊपर तक देनी पड़ेगी, और जो अश्लील पिक्चर नाना तरह के चल रहे हैं उनके ऊपर आपको और बंधन लगाना होगा, साहित्य पर बंधन लगाना होगा। कॉलेज में संयम और सील के कहानियां जो थी पहले पुराने जमाने में, उन कहानियों को पढ़ाना होगा। बोलते हैं बीना पहले ओणामासी दम पढ़ाया जाता था, उसको निकाल दिया, फिर गणेशायन में पढ़ाया जाने लगा, फिर बोले साहब हम नहीं पढ़ सकते, हमारा सांप्रदाय से भेद रखता है, तो बोले गधा पढ़ो, सब गधे होते जा रहे हैं, अगर गधा पढ़ो गधे हो जाओ। क्या कोई बात है ये? मैं जब अभी जयपुर में था तो वहां पर हम चूरगिर पर्वत पर, वहां पहाड़ पर थे, यूनिवर्सिटी के छात्र पहुंच गए, सचिव इत्यादि कोई विद्यार्थी थे। हमने कहा कि आपका यूनिवर्सिटी में भाषण रखना है। हमने कहा भैया कहाँ यूनिवर्सिटी जाना, हम तो वितरा साधु मुनि है। तो नीचे ऊपर कहीं भी हम गए तो छात्र प्रतिनिधित्व मेरे पीछे लगे रहे, जैसे पठान लगते। आखिर मैंने कहा भैया कुलपति से पूछो, तो उन्होंने कहा कि मेरी भी इजाजत ली है। मैंने कहा मंत्री से पूछो, मंत्री ने कहा साहब मैंने भी इजाजत दी और मैं भी उपस्थित रहूंगा। तब हमने कहा कि चलो, 7,000 छात्र छात्राएं थी। जब मंत्री बोलने लगे तो छात्रों ने चिट्ठी लिखी उनके सिर पर फेंका, बोले आप बैठ जाओ आपका रोज सुनते हैं। जब कुलपति ने बोलने लगे बोले आप बैठ जाओ आपका भी सुनते हैं, सबने आंदोलन कर दिया। और जब मैं बोलने लगा तो शांति से बैठे। तब वहां पर सचदेव लड़के ने, बहुत बड़ा सुंदर आराम सर था, बोले कि मुझे आज ज्ञान मिल गया। बोले जो बोलता है और चलता है और चलता है और बोलता है उसी की सुनाई होती है और बाकी की सुनाई नहीं होती है। बोले आज मुझे समझ में आया ये बात उस सचदेव अलाम सर ने, बोले कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में पैर में मुनिश्री जी के लगने से ये पवित्र हो गया और वहां प्रतिज्ञा उन छात्रों ने ली कि हम बीड़ी नहीं पियेंगे, हम शराब नहीं पियेंगे इत्यादि वहां खड़े होकर और प्रतिज्ञा ली। तो महानुभाव मुझे यही कहना है इन तत्व ज्ञान का सर्वोपरि अधिकारी तीर्थंकर गणधर और फिर हमारे आचार्य और उपाध्याय परमेश, और अंतिम नंबर जो संयमी विद्वान हो वो शास्त्र गद्दी का अधिकारी। जो संयमी नहीं है वह शास्त्र गद्दी बैठकर उस शास्त्र को और अपने को और समाज को संस्कृत देश को अपवित्र कर दे, कैसे संभव है? अमृति नाम का चीज का अमृति को तो सुनने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया, पता ही मुझे किसी शास्त्र में प्राप्त समस्त शास्त्र प्रव्यक्त होकर स्थिति सारे लंबी जोड़ी उसके अंदर लिस्ट दी गई है वक्ता के लिए, जिन शास्त्र में वक्ता को यह भी नहीं माना, वक्त प्रमाणक वचन प्रामाण्यम भोला के 40वां पृष्ठ तक इसके वर्णन करते उन्होंने कहा कि वह संयमी होना जरूरी है। भगवान कौन थे? संयमी थे, असंयमी थे? कुंड संयमी थे, असंयमी थे? मान भाव संयमी व्यक्ति ही वक्ता हो सकता है, अन्यथा नहीं, ये हमारे यहां प्रमाण है। ये प्रमाण मुझे स्पष्ट रूप से इस यूनिवर्सिटी में जब बोल रहे थे तब हुआ कि चिट्ठी फेंका ऊपर से कागज में लिखे। हमारे मूलचंद पंडित जी भी आए थे साथ, तो सारे कपड़े समेट के बैठे थे, तो बिल्कुल सारे कपड़े अपने बांध के बैठे थे, धोती पहन के। एक ने पूछा कि वैसे क्यों बैठे हुए? बोली हम मुनि जी आए हैं, कोई दंगा हो जाए तो भागने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, पहले से तैयारी में बैठा हूं। मुझे मुझे वहां लोगों ने कहा कि मुनि जी गए हैं, पता नहीं यूनिवर्सिटी में 7-8 हजार छात्र क्या होगा, इसलिए मैं पैर इसे और दरवाजे पर बैठा था कि कहीं दंगा हो जाए तो भाग जाओ। तो वहां के छात्र ले जाते समय आदर से ले गए, और जहां मैं एक मील दो मील पर छेड़ा था वहां तक पैदल बिना कुछ पहने हुए यूनिवर्सिटी के जो जैन छात्र ने सब अजैन छात्र थे वहां छोड़ने आए। तो महानुभाव ये ब्रह्मचर्य और शील ये चर्चा का विषय नहीं है, ये जीवन पर प्रयोग का विषय है, इसलिए मुझे खास तौर से आज कहना है, याद रखना आचार्य शांति सागर महाराज महात्मा गांधी जैसे इस देश में तब तक पैदा होते रहेंगे जब तक इन महिलाओं के अंदर शील और संयम मौजूद है, जब तक इन पुरुषों में शील और संयम मौजूद है, और जिस दिन इस देश में खत्म हो जाएगा बोले आप समझिए कि देश नाश के और गर्त पर हो जाएगा, पाश्चात्य और इस देश में कोई फर्क नहीं है। आज भी हमारे देश के अंदर संयम और शील कोई मिलेगी तो इस देश के अंदर अधिक पाश्चात्य देशों में सर्वे कराइए और हमारे देश में सर्वे कराइए, आप 99% आज भी इस देश के अंदर क्या बतावे कि उसको वो पति तिरस्कार करने के बाद भी अपने श्रद्धा और भक्ति वो नहीं छोड़ती। यदि भी तिरस्कार करना पाप है मैं बोलता हूं, परंतु तो तिरस्कार पति के प्रति वो निष्ठा से कुंडाचार्य ने रहनकार में लिखा है, पढ़िए आप उसको, तो पढ़ने के आप लोगों की रुचि नहीं होती है, क्या लिखा? पति ही न सती पति भक्ति बिना, पति भक्ति के बिना सती त्रिकाल में नहीं हो सकती, क्या जरूरत थी ये बात उनको उद्धृत करने की? पति भक्ति के बिना सती नहीं हो सकती, इसी प्रकार से पत्नी भक्ति बिना वो भी साता नहीं हो सकता है पुरुष, यही कि वो कोई भटकते रहे कहीं भी, ऐसे नहीं है। इसका हमारे यहां सापेक्षवाद सिद्धांत है, निरपेक्षवाद सिद्धांत नहीं है। तो महानुभाव आज जो अंतिम है ये स्वर्ण का कलश है, और उसकी नीम जो रखी गई है वह नीम की शोभा मंदिर की शोभा उस कलश जैसे है। तो आज आप संकल्प और प्रतिज्ञा करिए, क्या हमारे यहां शास्त्रों में लिखे हुए कि कोई विश्वास नहीं कर सकता? अश्विनी चतुर्दशी के दिन जो ग्रस्त थे और वो शील व्रत को पालन करके ब्रह्मचर्य को वर्तन पालन करके स्मशान भूमि में कपड़े उतार कर वह मुनि समान तप करते थे, जो आज हम मुनि लोग कहलाते हम नहीं कर सक रहे स्मशान भूमि में, कहां थे हमारे पूर्वज? उनके याद करते रोमांचकारी शरीर पर खड़े होते ग्रस्त श्रावक, क्या मुनि के स्मशान भूमि में गए और वह तपों में खड़े होते? ब्रह्मचर्य अश्विनी चतुर्दशी परोपी जीव में ये शास्त्रों में लिखे हुए हैं। यदि ये संयम आज पालन इस प्रकार से समाज में देश में राष्ट्र में सरकार भी महत्व दे रहे और समाज वाले प्रत्येक महत्व देते और इस प्रकार से होता जो आज जनसंख्या के लिए चिंतापूर्ण राष्ट्र है वो कभी नहीं हो सकता। यदि इस पर रोक नहीं लगा, संयम से पालन नहीं करे, संयम जीवन सीखे नहीं, जीवन में प्रयोग नहीं करे, भी दिखाई देंगे। तो इसलिए राष्ट्र की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और आत्मा के पवित्रता की दृष्टि से भाव कर्म भाव पाप बंध और द्रव्य पाप बंध नहीं हो, इस सबसे बचने के लिए संयम जो बताया था वह अंतिम उसकी पूर्णता यही हो सकती है का ब्रह्मचर्य। इसमें तो यहां आचार्य ने लिख दिया सूत्र, इसमें प्रथम सनातन ब्रह्मचर्य जगत रहे। तीन लोक में एक ही व्रत काशीराम के स्वामी को कहा, एक ही व्रत ले लेता है बोले देव परजामी जन्मे को, इसको क्यों नहीं जोड़ देते हैं, इसको क्यों नहीं ये करते हैं, जो कठिन है उसको तो ढकेल ले उधर और जो सुलभ है यही चर्चा जवान में करते रहो, रोटी और दाल। शंकर महाराज ने कहा रोटी और दाल न रसोई घर में जाओ और न कहीं पकाओ ना तो कोई जरूरत नहीं, पेट भरेगा नहीं भरेगा। तो बिना क्रिया की हमारी संस्कृति नहीं चल सकती है, इसलिए खास तौर से मैं यही कहूँ पुरुष और नौजवान सब लोगों के लिए कि भैया आप लोग आज का धर्म अपने मन में संकल्प करिए, हम सदा संतोष रहेंगे और सदा संतोष में एक मत समझिए उसमें कोई पाप नहीं लगता है, उसको भी बहुत संयमित जीवन व्यतीत करने के लिए जो सदग्रस्त होगा, निरादर्श होगा, सम्यक ज्ञानी होगा, सम्यक चारित्रवान होगा, सम्यक दृष्टि होगा, वह कभी भी उस चारित्र का तिरस्कार नहीं कर सकता, अवहेलना नहीं कर सकता, उसे जवान से शोभा नहीं दे सकती है। कैसे हो सकता है कोई एक सती अतिथि की सती की निंदा करे, नहीं हो सकता, सती सती की गुणगान गाएगी, हाँ ये बात अलग है असती सती की निंदा जरूर करेगी, अव्रती व्रतियों की निंदा जरूर करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं इन व्रतियों की निंदा बंद हो जानी चाहिए, जो भी धन्य है। जब आचार्य संसार महाराज जी से कहा कि महाराज ये तो कुछ भी आता नहीं, इसको तो एक अक्षर है मूर्ख, इसको क्या दीक्षा दे रहे, कुंडू सागर के बारे में विरोध हो गया बेलगांव में, महाराज जी ने कहा भैया हमारे यहाँ तो तुष्मास कहने वाला भी मुक्त हो गया, बोले कि इतना भी इसको आता है और ये भी ये भाव चारित्र पालन करते हुए रवि चारित्र के द्वारा अच्छे रहता है तो ये भी हम इसको श्रेष्ठ मानते हैं, जो तुमसे तो अच्छा है। अंत में महाराज जी ने जब बहुत बागड़े किया एक बहुत बड़े उद्योगपति ने, तो उन्होंने कहा कि बेलगांव के वोटर की करके थे, बोले कि तुमसे तो अच्छा है, तुम जो गृहस्थी में फंसे हुए है इसका क्यों उसको प्रोत्साहन दे दो, रक्षा करो, इस व्रत की क्यों निंदा करते हो। तो महानुभाव कि धन्य है जिन्होंने अपने थोड़े बहुत भी जीवन के अंदर संयम पालन कर लिया, व्रत को पालन कर लिया और तीन लोक में सबसे बड़ा धन्य कोई है तो वह ब्रह्म। नौजवानों से मैं एक कार्य का और याद दिला दूं, जब भगवान राम और सीता को रावण ने हरण कर लिया चले गए, आप सब लोग जानते हैं पर मैं केवल याद दिला रहा हूं, क्या जब उसमें लिखा है क्या नाम उसका हनुमान नाटक में, हनुमान नाटक में ये लिखा उनकी उपरणी गिर गई और गहने गिर गए बहुत से रास्ते पर सीता फेंक दी गई, जब उनकी एक एक चीजें दिखाते गए राम ने कहा रे लक्ष्मण ये देखिए, पहले दिखाया उन्होंने पैर के अंदर 35 वागन चिन्ह सीता का, मेरा ये घने ये घने सब दिखाए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें से ये नहीं जानता हूं, ये नहीं जानता, ये घेना नहीं जानता, ये घेना नहीं जानता हूं। वाक्य सुनिए आप लोग, ना हम जानामि कीयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे कभी जानामि नित्यम पादावि वंदना। हे राम मैं न तो कीर को जानता हूं, न कुंडल को जानता हूं, न और कोई चीज को इन गहनों को पहचानता हूं, केवल भावी की चरण में पहने दिए उस बिच्छू को और नहीं पहचानता। अपने भावी को मां के समान समझने वाला वह लक्ष्मण धन्य है, उसका जीवन धन्य है, मां के समान समझे और हां अपने इस देश के अंदर कि बड़ा भाई मर जाने के बाद और उस भाभी से शादी करने की परिपाटी शुरू हो, और फिर हमारे जितने बड़े बड़े आलोचक विद्वान लोग हैं वो सब मौन मुद्रा में मूंग पट्टी लगा बैठे भी है, देखते भी बैठे भी। विद्वान हुआ यूरोप खंड में हेनरी सप्तम ने 1501 में शुरू किया, पढ़िए आप गोल्डन का इतिहास, गोल्डन का इतिहास पढ़िए, उन्हें स्पष्ट लिखा है कि पोप के पास राजकुमार और अपने बड़े भाई मरने की बात जो उसकी विधवा पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मैं इसे करना चाह रहा हूं, तो उसके आज्ञा पत्र मिलते ही उसके बाद जनता ने पोप के पास जाना बंद कर दिया और मर्जी जैसे शादी कर लेना शुरू कर दिया। जब भी छोड़ो जब भी शादी करो, ये परिपाटी शुरू हुई गोल्डन का इतिहास ब्रिटेन का। दूसरी बात, राहुल शंकराचार्य ने इस्लाम धर्म की रूपरेखा एक किताब लिखी जो इलाहाबाद की किताब महल से छपी हुई, जो मोहम्मद पैगंबर थे जीनी नाम की उनकी पत्नी थी, मृत्यु के समय पत्नी ने पूछा कि मेरे लिए कोई आज्ञा, बोले हाथ में हाथ मिला दे, बोले क्या, कि मैं किसी से जीवन तक शादी नहीं करूंगा। राहुल शंकराचार्य ने लिखा मोहम्मद पैगंबर के, जो लोग इस बात को कोई महत्व नहीं देते हैं तो मोहम्मद पैगंबर को जरूरत क्या थी कि उससे हाथ में हाथ मिला लिया, बोले मैं शादी नहीं करूंगा प्रतिज्ञा की, तब उन्होंने सांस छोड़ते हुए प्राण छोड़ दिए। और आज उसी राष्ट्र के अंदर ये परिपाटी चली, बोलते हैं कि भैया एक पति ने भी पूछा पत्नी को कि भैया तुम शादी तो नहीं करो, बोले कि मैं तो साहब आप मरे जा रहे तो मैं मरने की बात करूंगी, बोले इतना तो करो व्रत ले लो हाथ मिलाओ, बोले क्या, बोले कब्र सूखने तक तो कम से कम नहीं करना। तो साहब उसने हाथ तो मिलाया पर पंखा लेके जाके कब्र सुखाने के लिए बैठ गई वहां। कहा तो महानुभाव जो बड़े बड़े पुरुष हुए उनके जीवन को और पढ़ने के लिए इसीलिए मना किया जा रहा है कि भैया सब है बंद है, क्या बंद है। तो ऐसे हजारों सैकड़ों कहानियां विश्व के अंदर प्रचलित है, मैं अधिक कहना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारे अपनी संस्कृति जो आदर्श है श्रेष्ठ है उच्च है वह केवल इस एक पर आधारित है। भारत देश यदि आदर्श है रविन्द्रनाथ टैगोर। एक घटना और बताऊं जरूर, जब मेरठ में कुछ अपने ही विद्यालय के शांति निकेतन के कन्याओं को लेके और नृत्य डांस कराया सार्वजनिक रूप में, और वहां के लोग गांधी जी के पास गए, बोले आप जिसकी प्रशंसा करते हो देखिए हो लड़कियों को नचवा रहा है स्टेज पर। गांधी जी बोले ऐसे नहीं हो सकता, बोले कि ये हो सकता है कि नहीं, हम लोग आए तुरंत उनको चिट्ठी लिखा, बोले आप चले आओ, बोले आपने क्यों ऐसे करवाया, क्या हमारे देश के अनुरूप है ये, बोले साहब मुझे पैसे की जरूरत है। उन्होंने कहा क्या तू छोड़ देगा मैं पैसे दिलवा दू, बोले बिल्कुल छोड़वा दो, दो तीन उद्योगपति को बुलवाए, बोले लाख लाख रुपए दे दो, बोले आज से कम कला है इस दृष्टि से सिखाओ पर सार्वजनिक दृष्टि से उसको लड़कियों को नचवा कर पैसे इकट्ठा करना हमारे धर्म और संस्कृति के नाश कर जाएगी। ये मेरठ के अंदर घटना घटी, वहां के बुजुर्ग लोग प्रत्येक जिन्होंने देखा वो मौजूद थे मेरे पास आके, उन्होंने बताया जब ब्रह्मचारी पर मैंने भाषण दिया था उसके, जो वहां रामराज परिषद के अध्यक्ष कालीचरण पौराणी जो संस्कृत के पंडित और वहां कॉलेज में पढ़ाते उन्होंने बात मुझे सुनाई, नाम भी मुझे याद है। तो महानुभाव कहां तो हमारे देश की संस्कृति और इस कला के नाम से नाना तरह से जो ये स्वच्छंदता चल रही है, और इस स्वच्छंदता के लिए भगत सिंह फांसी की सजा पर नहीं गया, यदि लौट के आएगा तो रोएगा मैं इसके लिए फांसी नहीं गया था कि मेरे देश के आदर्शता के लिए गया था। तो मुझे यहां बैठे हुए समस्त श्रोताओं से यही कहना है कि इसको आप मत समझिए जो लक्ष्मण की शिक्षा दे दिया जीवन में, और आपकी भी बहनी होती है सड़क पर जाते हुए किसी कन्या का मजाक करना या किसी प्रकार से करना ये सब पाप बंध का कारण है। ये कुमकुंड आचार्य ने भी इसमें लिखा है, अन्यत्र ग्रंथों में लिखा है, और राज्य दृष्टि से भी वो कानूनी दृष्टि से भी पाप है कानूनी दृष्टि से। तो मैं अधिक न कहते हुए आज के विषय में मन में आप संकल्प करिए कि भी हम तो पूर्ण ब्रह्मचार्य पालन करेंगे, नहीं कर सकते हैं बोले सदा संतुष्ट है, बाकी सब जितने कन्या है स्त्री है महिला है वह सब अपने बहन माँ इस प्रकार से आप सकते हैं, और जो स्त्री है वह अपने पति के व्यतिरिक्त इतर सब लोगों को, इसीलिए तो सप्तपदी जो शादी की अग्नि के साक्षी पूर्वक अग्नि किसी को क्षमा नहीं करती है, अग्नि ब्रह्म कहा, ब्रह्म इसलिए कहा कि जैसे ब्रह्म बोले तो आत्मा में ही सत्य मौजूद है, तो विशेष अग्नि में भी सत्यता मौजूद, वह चाहे तो कोई भी आदमी हो जो हाथ डालेगा उसको जला देगी, वो क्षमा नहीं करेगी किसी की। इसलिए अग्नि शक्ति पूर्वक ही सत्य होकर और सप्तपदी के नियम लेते हैं और दोनों का धर्म पालन करने के लिए हमारे देश के आदर्श संस्कृति को बचाने के लिए आप खान पान की शुद्धि, खान पान शुद्धि का मतलब कि शराब जो है बहुत खतरनाक है। इसी से सारे दुनिया भर के ये जो चल रहे हैं पिक्चर और शराब, ये दो ने हमारे देश को नाश कर दिया और नाश करते जा रहे। और इंग्लैंड में तो कुछ तो बंधन है, जब वहां के राजकुमार ने चैल्सर ने छोटी उम्र 17 साल 18 साल के बाद पी सकते कानून है, 17 साल में पीने से उसको दंड हो गया, सजा हुई, जो कि भावी राजा बनने वाला इंग्लैंड का अंदर। तो मैं आप बैठे भी मेरा ये प्रवचन सफल में तभी समझू जब आप मन में संकल्प और व्रत करके कि हम सदा संतोष रहेंगे, वो इतनी उम्र हमारी वृद्धावस्था आ गई तो पूर्ण ब्रह्मचर्य रूप से मन वचन का ऐसे पालेंगे। दिल्ली में मैं जिस दिन इस ब्रह्मचर्य व्रत पर और भाषण दिया तो वहां एक कामता प्रसाद जी जिनको 2500 रुपए तनखा सरकारी और बहुत बड़ा ऑफिसर, उन्होंने वहीं पर आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया और सप्तम प्रतिभाधारी प्रतिपत्नी लेकर आज वो 3 साल से श्रवण बहुल में रह रहे हैं। यहां भी अभी आके 15 दिन रह के गए और सप्तम प्रतिमाधारी 2500 रुपए तनखा, एक पैसा छोड़ना मुश्किल, तनखा भी छोड़ दिया, रिटायर्ड होना हमें तो सब छोड़ छाड़ के और बच्चों को दे दिया और कुछ नहीं, अपने खर्चा के लिए लेके और दोनों के दोनों हाथ कर रहे हैं। छोटे से 50 साल 51 साल की उम्र की बात बता रहा हूं, जबकि मरने तक आदमी कुछ छोड़ने को तैयार नहीं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को यही कहूं कि आप लोग अपने संयम धारण के लिए और ब्रह्मचर्य को परिपालन करने के लिए और मेरे शास्त्र को सुनने के बाद यदि आपके मन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो मैं निरर्थक समझता हूं। ईश्वर भूमि में बीज बोना जैसा हो गया मेरा यहाँ आना, इस साल के लिए बहुत मैं तो जा रहा था बम्बई या और कहीं आगे जल्दी जाने के लिए बहुत आग्रह किया, यदि मेरा यहाँ दुकान में कोई व्यापार नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के व्यापारी सब कंजूस है और वो व्यापार में चतुर है पर धर्म के व्यापार में कंजूस लोग है, इसलिए ऐसे कंजूसी लोगों को कैसे मैं संतोषी से दोनों हाथ से और आशीर्वाद दे सकता हूँ आप ही सोचिए। तो इसलिए आपकी बुद्धि धर्म बने, आपकी बुद्धि शीलवान बने, आपकी बुद्धि संयमवान बने, इन आशीर्वाद के साथ मैं आज का संक्षिप्त में भाषण समाप्त कर रहा हूँ। और बहुत बहुत मैं आपको सुनने के लिए लोग आप लोग जो आस्था से सुनते रहे, श्रद्धा से सुनते रहे और जो कुछ भी हम कहते समय, अच्छे भाषण कला भी बहुत बड़ा कठिन है, शास्त्रों में आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी निर्वेदनी नाना रूपों में आचार्य ने समझाया है। इन सब बातों के बीच में मैं यही कहता हूं कि वक्ता तो क्या, मैं सच बात बता रहा हूं, अंतकरण से बता रहा हूं कि उत्तम श्रोता भी जीवन में बन सके तो मेरे अपने 28 मूलभूत शांति से और अच्छे तरीके से पालन होंगे, ये मैं समझता हूं। आप मत समझिए कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं, बहुत अच्छा बोलता हूं, मेरे में इतना बढ़िया अच्छा नहीं बोलने आता है कि क्या बताऊं आपको। बड़े बड़े वक्ता रहे, आचार्य शंकर महाराज जी बोलते थे कुल 15 मिनट, मैंने ऐसे वक्ता अपने जीवन में नहीं देखा। आध्यात्मिक नंदन वन में श्रोताओं को ले जा बैठाते थे, आदमी भूल जाता था कि हम पंडाल में बैठे, सड़क पर बैठे या कहीं बैठे भी इतने सुंदर बोलते थे कि मैं 8 साल महाराज जी के साथ रहा, 15 मिनट से 16 मिनट बोलते ही नहीं थे, बहुत शरीर से थके हुए थे, 7000 उपवास, इनके शरीर को बिल्कुल जर्जरित बनाया था ऐसे महान पुरुष, और उनके संयमी के मुंह से निकलने वाले एक एक वाक क्या था, मोती भी जड़े रखो ऐसे बोलते थे बहुत। और अध्यात्म के अंदर उनकी जो अपनी गति थी बहुत परिपक्वता थी, क्योंकि यश ज्ञानमयम तप, जो तप से तपाया हुआ ज्ञान होता है वो परिपक्व ज्ञान है और तप से तपाया हुआ जो ज्ञान नहीं वो अपरिपक्व है। इसलिए आचार्य सांसार महाराज जी के वक्तृत्व कला में और दूसरे बात मैंने जो पंजाब के गवर्नर गाड़गिल उनके भाषण महाराष्ट्र पुणे में बोले थे, उन्होंने लिखा भी है, एक शब्द बोलने के बाद दोबारा उसका उच्चारण नहीं करते थे, अस्खलित वक्ता थे। और तीसरे जो अपने देश में इतिहासकार ने लिखा है कि सरोजिनी नायडू जो अंग्रेजी में बोलते थे, बोले कि जनता ये पता नहीं चलता था कि हम कहां बैठे थे, उसके भाषण के लोग लालायित रहते थे। तो अधिक न कहते हुए और मैं इतना सा कहूं कि मैं जब दिल्ली में कुछ सार्वजनिक रूप से इसी भाषण कर रहे थे तो राजदूत और उनकी पत्नियां जब आई थी उन्होंने हमारे भाषण के बाद एक ही पूछा, क्या ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र हमें भी प्राप्त हो सकता है? बोले क्यों नहीं आपको प्राप्त हो सकता है। बोले आप यदि इस खान पान के विषय में ये कर दिया जाए तो जरूर होगा। तो वो अफ्रीका के राजदूत, उनका नाम याद नहीं, हमारे विदाई समारोह में भी आए थे पत्नी वगैरह, और उन्होंने आजीवन अपने भक्षा भक्ष का विवेक स्वयं पति पत्नी ने छोड़ा, और उसके बाद उनके बच्चों ने भी उसको छोड़ा। मैंने कहा सबका त्याग करवा दिया। तो मान लो आज जो भक्षा भक्ष का विवेक नष्ट होने जा रहा है, इसके बारे में और एक सील के बारे में मुझे जोर देके कहना, और बाकी सब आप स्वाध्याय करके बहुत ज्ञान प्राप्ति करिए। मंदिर दर्शन जरूर जाना चाहिए, मन को 24 घंटे में शांति मिलती, जो मन में बुरे विचार आते वो साफ होने के लिए हमें साधना के लिए, साधना मंदिर जो है, प्रार्थना मंदिर जो है, वहाँ जरूर होना चाहिए। इन शब्दों के साथ समाप्त करना है। नमो नहीं मुझे मंत्र तो बताओ। ओम ह्रीम श्रीम उत्तम ब्रह्मचार्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम ब्रह्मचार्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम ब्रह्मचार्य धर्मांगाय नमः। बस इसको पढ़ो आप रोज ही, तो आपकी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। औषध है, अरे बुला उसको भी बोलो। नमो नमो अरहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो ऐरियाणं, नमो नमो उवछायाणं, नमो No, no, no.